Right? So throughout this passage, he talks about rest in a number of ways. And because of that, it can get confusing in our minds. And what we want to do is figure out exactly what he means. So when God spoke from the mount to Moses, and he gave them the law, he didn't say they were going to be saved by the law.
और वो उसने नहीं कहा कि व्यवस्था के जरिए वो लोग उद्धार पाएंगे.
He said, "Believe in me."
लेकिन वो कहा मुझ पर विश्वास करो.
And the law was showing them that they had to believe in him.
और व्यवस्था उनको यही दिखाया कि उनको विश्वास करना है.
It was their schoolmaster to show them that they were sinners.
ये उनका स्कूल का टीचर था जैसे उनको सिखाया गया और उसे आगे ले सके.
They needed a sacrifice to pay for their blood.
और उनके लिए एक बलिदान चाहिए था जो पाप की क्षमा दे पाए.
And he said, "If you believe, then you will enter into my rest. I will give you the promised land."
और उसने कहा अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और विश्राम स्थान लेके जाऊंगा.
It was a promise given to them.
और ये प्रतिज्ञा उनको दिया गया.
Believe me and you will enter my rest.
और तुम ये प्रतिज्ञा तुम विश्वास करो तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करोगे.
Egypt will be left behind and the struggles with the other kingdoms will be left behind.
मिस्र उनके पीछे रह गया और सारे समस्या उनके पीछे रह गया.
What did they do?
और उसने वो लोग क्या किए?
They walked in unbelief.
लेकिन वो लोग अविश्वास में चल पड़े.
And not only then.
और ऐसा ही नहीं.
Study all the way through the Old Testament.
जब हम पूरा पुराना नियम को पढ़ते हैं.
Look at the picture of Israel.
और इज़राइल की पिक्चर को छवि को हम जब देखते हैं.
There's times they believe.
और समय था वो लोग विश्वास किए.
And there's times they don't believe.
समय था वो लोग अविश्वास भी किए.
They were in the land.
और लोग वो अपने वो ज़मीन पर थे.
Did they have rest?
और क्या वो विश्राम किए?
During the times of belief.
Yes, जब विश्राम कर रहे थे जो विश्वास कर रहे थे तो विश्राम कभी कर रहे थे.
The book of Judges is a fascinating look at the life of a believer.
और विश्वास के जीवन में न्यायियों की किताब एक अच्छा रोल पैदा करता है.
When they were trusting God, he gave them rest from their enemies.
जब वो परमेश्वर के लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे तभी परमेश्वर उनको विश्राम देता था.
And then the next generation comes along and they don't believe.
लेकिन उसके बाद जो जनरेशन आते थे वो विश्वास नहीं करते थे.
And so God raises up an enemy to oppress them.
इसलिए परमेश्वर उनके विरुद्ध में सेनाओं को खड़ा करता था और उनको परमेश्वर सबक सिखाता था.
And they're in oppression under their enemies for years.
और सालों साल वो लोगों के ऊपर सेनाओं का प्रेशर रहता था.
Until they come to their senses and cry out to God.
जब तक वो याद ना कर पाए कि हाँ परमेश्वर हमारा एक परमेश्वर है और उनके सामने वो रो नहीं रोते हैं तब तक.
And he sends them a judge, a deliverer.
और वो परमेश्वर क्या करता है कि न्यायियों को परमेश्वर भेजता था.
He sends them a savior.
और एक उद्धारकर्ता को भेजता था.
And he defeats the enemy.
और वो सेनाओं को परास्त करता था.
And all the days of the judge, they dwell in peace and they have rest.
और न्यायियों के समय में सब लोग ऐसे ही रहे और विश्राम में गए.
When the judge dies, another generation comes up that doesn't believe.
लेकिन जब वो न्यायी मर गया तब दूसरा वंश उठे और परमेश्वर के विरुद्ध में गए.
And their rest is removed again.
और उनका विश्राम फिर से चला गया.
And the cycle keeps repeating and repeating.
और ये जो परिवर्तन ये जो साइकिल चल रहा था.
Because of unbelief, they didn't have his rest.
और क्योंकि अविश्वास के कारण परमेश्वर के वो विश्राम को लोग पा नहीं सके.
When they believed, they did.
और जब वो विश्वास के तब पाए.
And the writer of Hebrews wants us to understand that.
और इब्रानियों के लेखक यही हमें समझाना चाहता है.
Belief equals rest.
और विश्वास और विश्राम के साथ तुलना.
Now, when he's talking, he gives us two types of rest about the believer.
जब ये विश्राम के बारे में कहते हैं विश्वासी के जीवन में दो तरीके का विश्राम के बारे में.
Because there is no way for you to enter rest because you can't work for it.
और ये एक विश्वासी के लिए नहीं है. विश्वासी के जब तक वो उसी हिसाब से काम नहीं किया है वो नहीं पहुंचा है तब तक वो उसको विश्राम नहीं मिलेगा.
But when you believe upon the Lord Jesus Christ, he gives you his rest.
परंतु अब जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तभी आपको विश्राम मिलेगा.
So that every believer has rest. Why?
इसीलिए हर विश्वासी के जीवन में विश्राम है. क्यों?
Not because you work for your salvation.
क्योंकि आप उसके लिए जो काम किया आपके उद्धार के लिए इसीलिए नहीं.
But because Christ did.
परंतु यीशु ने काम किया उसी लिए.
So according to salvation, you're at rest.
और आपके उद्धार के हिसाब से आपको विश्राम मिल गया उसका मतलब.
But in verse 7,
लेकिन सातवां आयत पर लिखा जाता है.
He says again, he limited a certain day, saying in David.
और सात आयत में ऐसा लिखा जाता है, उसमें संदेह नहीं कि वो, four no?
Seven.
Yeah, four seven.
Four seven. Yeah.
Yeah. Just a minute. Let me open. तो फिर वो किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद के पुस्तक में कहता है. या कंटिन्यू.
Today, after so long a time, as it is said.
वो एक विशेष दिन को ठहरा कर दाऊद के पुस्तक में कहता है.
Today, if you will hear his voice, harden not your heart.
यदि आज तुम उसका शब्द को सुनो तो अपना मन को कठोर मत करो.
He says today.
वो कहता है आज.
This is 500 years after what Moses was told on the mount.
और जब मूसा पहाड़ के ऊपर वो उसको मिला था उससे 500 साल के बाद है ये.
And he says in verse 8, if Jesus had given them rest then.
और इस यहाँ पे आठवां आयत में लिखा जाता है यीशु मसीह ने उनको विश्राम दिया.
If the rest was the promised land.
और अगर वो विश्राम जो है वो प्रतिज्ञा का देश था.
Then how could David 500 years later say today?
तो दाऊद कैसे 500 साल पहले कह रहा है कि आज वो विश्राम का दिन.
Today if you won't harden your hearts but believe then you'll enter his rest.
आज अगर उसके शब्द को सुनो तो मन को कठोर मत करो नहीं तो अब तुम प्रवेश नहीं करोगे.
It's because there's two aspects to the promise.
और ये दो तरीका है परमेश्वर का विश्राम के अंदर प्रवेश करने का.
There is an already and a not yet.
एक हो चुका है और एक होने वाला है.
There is a present reality.
एक वर्तमान की सच्चाई.
And there's a future reality.
और एक भविष्य की सच्चाई.
When I was saved by the blood of Jesus Christ 42 years ago.
और जब 42 साल के पहले जब यीशु मसीह के लहू से मैं धुला गया और उद्धार मुझे मिला.
He gave me rest from all my efforts.
और मेरे सारे धर्म कर्म से वो मुझे विश्राम दिया.
I couldn't have worked for my salvation. And so he said, stop trying.
मैं उद्धार के लिए जो काम कर पा रहा था वो मैंने नहीं किया. वहाँ पे मैं बंद किया.
I do not need to work to be with God in heaven.
और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहने के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा तभी.
There is an absolute truth in that.
और वहाँ पे एक कड़ी सच्चाई है.
Your works cannot save you.
आपका काम आपको उद्धार नहीं देगा.
Don't ever let anyone say they can.
और कोई भी किसी का काम किसी को नहीं देगा.
But here's the tension.
लेकिन यहाँ पे वो खींचापन है.
Here's the part that seems like a paradox.
और यहाँ पे वो जो हम सुन रहे हैं वही पे खींचापन है.
Look at verse 10 and 11.
10 और 11 को हम जब देखते हैं.
9, 10 and 11.
9 और 10, 11 को देखते हैं.
Someone read.
कोई पढ़ सकते हैं. इसलिए जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों का पूरा करके विश्राम किया है. इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े.
Although I already have rest,
और हमको एक विश्राम मिल चुका है.
Although I have ceased from any labors regarding my salvation,
और मेरे उद्धार के लिए मुझे जो काम करना था वो बंद कर चुका हूँ मैं.
I'm told that my rest is yet future.
फिर भी मुझे कहा जा रहा है कि मेरा एक विश्राम भविष्य में है.
And that I have to labor to enter that rest.
और उसी के लिए मुझे मेहनत करना है.
I have to work to enter that rest.
और उसी के लिए मुझे मेहनत करना है विश्राम में प्रवेश करने के लिए.
What is he talking about?
और इसके मतलब वो यहाँ पे क्या कह रहा है?
Is he talking about laboring for my salvation?
और उसका मतलब ये कह रहा है कि मेरे उद्धार के लिए मुझे और मेहनत करना पड़ेगा?
Not in any way.
No, ऐसा नहीं है.
He's talking about clinging to Christ.
इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह को थामे रहना है.
He's talking about finishing the race.
इसका मतलब दौड़ को पूरा करना है.
He's talking about showing our citizenship from heaven here on earth.
और उसका मतलब वो कहना चाहता है कि इस धरती पर स्वर्ग की नागरिकता को देखना है हमें.
As he says in verse 1, fear God so it doesn't appear that any of you have fallen short.
और इसका मतलब वो परमेश्वर को भय मानना है और हम कोई भी नहीं गिर पड़ेंगे.
This is exactly what Paul means in Philippians chapter 3.
और पौलुस यहाँ पे फिलिपियन उसका 4 अध्याय में कहता है.
Turn over there.
4:3.
Philippians 3.
3, 4 or 4:3?
Philippians 3.
3.
Yes.
Philippians 3.
Someone read from verse 7 down to 14.
3 से
क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई.
7 to 14.
7 to 14.
7 to 14. परंतु जो जो बातें मेरे नाप की थी उन्हीं की उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, बल्कि मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझा हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, बल्कि उस अधार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहन भागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की सरलता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद पर पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातें को बातों की ओर बढ़ता जाओ।
So Paul,
यहाँ पे पौलुस,
do you remember his conversion?
और वो जो बात वार्तालाप कर रहा है आप वो देख पा रहे हैं,
you remember he's on the road to Damascus?
और आप जान पा रहे हैं कि वो जब दमास्कस के रास्ते पे था,
he's been persecuting Christians,
और वो मसीह लोगों को ताड़ना दे रहा था,
and Jesus appears to him,
और यीशु मसीह उसको दिखाई दिए,
and he says you're mine,
और वो कहे कि वो लोग मेरे हैं,
you're gonna follow me,
और वो कहा यीशु मसीह ने कहा तू मेरा है, और वो उसको उसके पीछे हो लिया,
you're going to do whatever I tell you to do,
aur main tujhe jo kahunga wo tu karega,
you're going to live your life for me from this point forward,
aur aaj se lekar tu mere liye jeevan jiyega,
that's Paul,
ye Paulus hai,
you can read through the book of Acts, you can read through the epistles,
aap prerit kaam se dekh sakte hain, aap ye sab ye isko padh ke dekh sakte hain,
and you can see he lived that out,
और उसी हिसाब से जीवन जी यहाँ देख सकते हैं।
But what does he say here in Philippians?
लेकिन यहाँ पे फिलिपियंस में वो क्या कह रहा है?
He says, look, I was grabbed hold of by Christ.
और कहता है कि मैं यहाँ पे पकड़ लिया हूँ।
If there was anybody who would never have fear about their salvation,
अगर कोई व्यक्ति है जो उसके उद्धार के विषय में उसको भय नहीं लग रहा है,
it would be the Apostle Paul.
और वो कौन है? वो पौलुस है।
Talk about a dramatic change.
और एक उसके एक अलग बदलाव आ गया उसके जीवन में।
We even talk about it as a Damascus road experience.
और हम बोल सकते हैं उसे वो दमास्कस का अनुभव बोल सकते हैं उसे।
All that he's done on behalf of the Lord.
और जो भी वो किया परमेश्वर के वो लिए किया।
Look at verse 12.
और 12 आयत को जब देखते हैं।
Not as though I had already attained.
मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ।
Either we're already perfect.
मैं या सिद्ध हो चुका हूँ,
but I follow after,
पर उस पद मैं उसके पीछे हो लिया हूँ,
if that I may apprehend that for which I am apprehended of Christ Jesus,
जैसे उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था।
Paul says Christ grabbed me on that road.
पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह वहाँ पे मुझे पकड़ लिया।
And I know he'll never let me go.
अब मैं जानता हूँ मुझे छोड़ेगा नहीं।
But in my life I have to constantly grab hold of him.
लेकिन मेरे जीवन में मुझे उसे हमेशा पकड़े रहना है।
Everything I do is about grabbing hold of Christ and holding on to him for dear life.
जो भी मैं कर रहा हूँ मैं यीशु मसीह को पकड़े रहने के लिए ही कर रहा हूँ।
He says in verse 13, I haven't yet apprehended.
वो कह रहा है कि वो मैं पकड़ चुका हूँ बोल के नहीं कह रहा हूँ।
I haven't been able to grasp him.
मैं अभी पा लिया बोल के नहीं कह रहा हूँ।
But I do this.
लेकिन मैं कर रहा हूँ।
I forget all those things that are behind.
और जो पीछे रह गया उसको मैं भूल गया हूँ।
And I look forward to Christ.
और आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता रहता हूँ।
I do all in my power to lay hold of Him.
और मेरे सामर्थ में लगा दिया हूँ कि ताकि मैं उसे पकड़ सकूँ।
So that whether it's by crawling.
और जैसे कि वो घिस घिस के जाने के बाद
by walking,
जैसे चलने के
or by running,
और दौड़ने के
I'm going to cross that
मैं जैसे भी होकर लेकिन मैं क्रूस की ओर दौड़ रहा हूँ।
Everything about my life has that as the goal.
और मेरे जीवन के जो जो उद्देश्य है वो वही उद्देश्य है.
He's not working for his salvation.
वो अपने उद्धार के लिए काम नहीं कर रहा है.
He's working out his salvation.
वो उद्धार के लिए काम कर रहा है.
And the writer of Hebrews says to us.
और इब्रानियों का लेखक यही कहते हैं.
Have that same fear.
और यही भय हमारे जीवन में भी रहना है.
Don't sit back and think, oh, I did this for Christ, and I did this for Christ, and I did this for Christ.
और पीछे बैठ के आप नहीं कहे कि मैं इसे इतना किया उसके लिए, यीशु के लिए ये किया, वो किया, ये किया बोल के.
Forget those things that are behind.
उसको भूल जाइए.
And press towards the prize of the high calling of Christ Jesus.
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जो बुलाया उसी के लिए आपको दौड़ना है.
Labor so that you will enter into that rest.
और परिश्रम करे ताकि आप उसके विश्राम में प्रवेश कर सके.
Don't fall short.
और नीचे ना गिरे.
Don't come short of your goal.
और आपके लक्ष्य के नीचे ना गिर जाए.
That's this whole thing about the Israelites is all there to show you.
और ये जब दिखाया गया ये सब इज़राइल के बारे में हमारे लिए ही है.
That's the danger.
और यही वो danger है.
Unbelief is the danger.
और अविश्वास वो danger है.
Trust Christ.
यीशु पर विश्वास करना है.
Know who he is.
और जाने कि वो कौन है.
Think about him from Hebrews 1.
और इब्रानियों 1 से उसको याद करें.
He's higher than the angels.
वो स्वर्गदूतों से भी ऊंचा है.
He lowered himself below them for you.
वो अपने को नीचे किया स्वर्गदूतों से.
Keep that in your mind all the time.
ये हमेशा अपने मन में रखे.
What a sacrifice.
कैसा कि बलिदान.
What a willingness to humble himself.
अब कैसे कि इच्छा आया खुद को नम्र करने का.
Cling to him.
और उसमें बने रही है.
And you will then act like him.
और उसी तरह आप उसी की तरह काम करेंगे.
You'll behave like him.
उसी की तरह आप व्यवहार करेंगे.
You'll have the mind of Christ.
और आपके मन यीशु का मन जैसा होगा.
That's what Paul says in Philippians 4.
और इसी उसी तरह पौलुस फिलिपियन 4 में ये कहता है.
Have this mind in you which was in Christ.
और यीशु का मन आपके मन में हो.
His mind was he was going to do everything to save your soul.
और उसका मन क्या करेगा आपके जीवन को उद्धार देने के लिए हमेशा सब कुछ काम करेगा.
Have in your mind you'll do anything to cling to Christ.
और आपका मन क्या करेगा यीशु को पकड़े रहने के लिए सब कुछ करेगा.
That's who he is.
और ये वही है.
That's what he wants for us.
अब वो यही चाहता है हमारे जीवन में.
He doesn't want us to fall short.
और वो नहीं चाहता कि हम नीचे गिर जाए.
What happens to someone who seems to fall short?
अगर कोई दिखाई पड़ता है कि नीचे गिरने के जैसा क्या होता है उसके साथ?
Do those people exist?
और अब क्या वो लोग अभी तक जिंदा हैं?
They certainly do.
हो सकता है.
Turn over to Peter.
पत्रस निकाले.
1 Peter.
पहला पत्रस.
Actually, maybe 2 Peter. Yeah, it's 2 Peter, sorry. 2 Peter.
2 Peter.
Chapter 2.
Okay.
और जिस प्रकार उन लोगों में
जो नहीं वो दोनों
डबल कैप.
Okay. Sorry, I was just 2 Peter and start reading from verse 4 and read to verse 8.
4 से लेके 8 तक.
क्योंकि जब परमेश्वर
only 4 and 8 or
4 through 8.
Okay.
Yeah.
4 से लेके 8 तक.
क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा बल्कि भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा ये नगर के विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में लिया दिया ताकि वे आने वाले शक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था.
Thank you. God didn't spare the angels that sinned.
परमेश्वर जो स्वर्गदूत पाप किए उनको नहीं छोड़ा.
He didn't send them a redeemer.
और उनके लिए एक मुक्ति देने वाले को नहीं भेजा.
They are destined for chains in the everlasting darkness and torment of hell forever.
Aur ve log bahar andhkar mein har din ke liye yuganyug log reh gaye.
Those that sinned before in the days of Noah.
जो नूह के समय में पाप किए थे.
Every single human being on the planet except for 8.
और 8 व्यक्ति को छोड़ के जितने भी लोग इस पृथ्वी में थे सब लोग मर गए.
These 5 and us 3. The rest of you are gone.
Select class.
Yeah, yeah.
Okay. और हम दो और यहाँ पे जो 5 है इनको छोड़कर बाकी सब चले गए.
That's the idea.
ये परमेश्वर का ये है योजना.
The entire world was condemned.
और सारा धरती तो दोषी ठहराया गया.
Because of their sin.
अब उनके पापों के कारण.
How can we tell the difference?
और हम कैसे इसमें हम डिफरेंस ला सकते हैं देख सकते हैं.
What happened to Sodom and Gomorrah?
और सदम और हमोरा के साथ उनके साथ क्या हुआ?
God destroys them with a great overthrow.
और परमेश्वर आग के द्वारा उनको विनाश किया.
And who does he save?
और किनको वो परमेश्वर बचाया?
He saves Lot.
और लूत को बचाया.
If we didn't have this passage in Peter,
अगर पत्रस में यही चीज हमें नहीं मिलता,
there's not a single Bible teacher in the world,
और दुनिया में ऐसा कोई बाइबल शिक्षक नहीं है,
who would have ever thought that Lot was a Christian,
और वो नहीं कहते कि लूत एक मसीह था.
Here he is living in Sodom.
और पता है?
Here he is living in Sodom.
Oh, वो सदोम में रहता था.
He could have been with Abraham.
वो अब्राहम के साथ नहीं.
He could have been with the people of God.
वो सदोम हो सकता था, अब्राहम के साथ हो सकता था, लेकिन परमेश्वर लोगों के साथ भी हो सकता था.
Instead, he chose to live with the Sodomites.
लेकिन वो सदोमियों के साथ रहने के लिए चुना.
He had no testimony whatsoever.
और वहाँ पे उसके साथ हो सकता कोई भी गवाह नहीं होगा.
And when the two angels come to rescue him,
जब दो स्वर्गदूत आ गए उसे छुड़ाने के लिए,
they tell him, "Go tell all your family members." To come,
वो कह रहे कि जाओ अपने परिवार को बोलो कि और उनको छुड़ा लाओ.
They think he's a crazy man.
और सोचते हैं वो एक पागल आदमी था.
We probably know how that feels.
ऐसा लगता है हम जब सोचते हैं.
My family think I'm crazy.
और उनके परिवार सोचते हैं ये पागल हो गया है.
But there is one. He has no testimony whatsoever.
और यहाँ पे उसके लिए कोई गवाही नहीं है.
He neither looks like a Christian.
वो मसीह की तरह ना तो दिखता था.
Sounds like a Christian.
और मसीह की तरह वो बोलचाल करता था.
Or acts like a Christian.
ना व्यवहार करता था.
In fact, when the townspeople and the people of Sodom want to take their way with the men that have come in, he says, "Oh, I'll give you my daughters."
जब वो कह रहे हैं वो सदोम के लोग जो अब आए वो खिड़की तरफ वो कह रहा है कि मैं मेरे बच्चियों को दे रहा हूँ.
What kind of a father does that?
कैसे वो कर सकता है कि पिता अपने बेटियों को दे सकता है?
What kind of a Christian does that?
और कैसे एक मसीह भी कर सकता है? नहीं कर सकता है कभी.
And finally, the angels take him and his wife and his 2 daughters.
और जैसे स्वर्गदूत उसको ले गए उसके स्त्री को जैसे ले गए.
And they tell him to flee to the mountains.
और कहे कि वो पहाड़ की ओर चले जाओ.
And he says, "I'd rather go to this little town over here."
लेकिन वो कहता है कि मैं ये शहर की ओर जाऊंगा.
Why didn't he say, "Where's Abraham? I want to go with him"?
वो क्यों नहीं कहा कि अब्राहम कहाँ गया? मैं अब्राहम की तरफ दौड़ा चला जाऊंगा.
Where is the security of God's people?
और कहाँ पे परमेश्वर के लोगों का वो सुरक्षा है? मैं उसी की तरफ चला जाऊंगा.
But no, he goes to Zoar.
लेकिन वो ज़ोआर की तरफ जा रहा है.
And then the next time we see him,
और जब दूसरे समय हम देखते हैं,
he's living in a cave with his 2 daughters.
देखते हैं क्या एक स्टूडेंट में वो दो बेटी के साथ है.
And his 2 daughters think everybody thinks dad is crazy.
और उसके दो बेटी सोच रहे कि सब लोग सोच रहे कि पापा पागल हो गए हैं.
So nobody's ever going to marry us.
और इसीलिए हमारे साथ कोई भी ब्याह नहीं करेगा.
So let's get dad drunk.
इसीलिए डैडी को क्या करेंगे पापा को क्या करेंगे पिला लेते हैं.
And the first night, the first sister lays with him.
और पहला रात में वो बड़ी बहन उसके पापा के साथ सो ली.
And the second night, the second sister lays with
him. और दूसरे रात में वो छोटी सिस्टर उसके साथ सो ली.
What kind of a testimony is that?
ये कैसे गवाही है?
It's awful.
ये खराब है.
There is nothing in his life that says this man is a Christian.
और ऐसा उसके जीवन में कुछ नहीं था कि वो कह सके ये मसीह है.
He seems to have fallen short.
और ये दिखता है कि वो नीचे गिर पड़ा था.
And yet, what does Peter say?
लेकिन पत्रस यहाँ पे क्या कह रहे हैं?
Verse 8.
और आठवां आयत.
For that righteous man.
4:8.
Still in 2 Peter.
Two eight. फिर पत्रस क्या कहता है?
For that righteous man,
क्योंकि वो धर्मी.
Lots of Christian.
ये मसीह है.
How shocking is that?
ये कैसे अचंभा करने वाला है कि ये मसीह है, धर्मी है.
It doesn't make sense.
और ये हमें समझने के लिए समझ से परे है.
But I can tell you something Lot didn't have.
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लूत के जीवन के बारे में,
he had no confidence in his salvation.
क्योंकि उसके उद्धार के लिए उसके जीवन पर आत्मविश्वास नहीं था.
He had no assurance.
और उसके पास वो सुरक्षा नहीं था.
He had no peace.
उसके जीवन में शांति नहीं था.
Because how could he?
कैसे भी हो सकता है?
There was no evidence in his life.
क्योंकि उसके जीवन के लिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता.
Somehow he still clung to Christ.
और हो सकता है कुछ समय के लिए वो ऐसे पकड़ कर रखा भी है.
But there was no fruit.
लेकिन फल नहीं है.
There are those that will enter heaven just like Lot.
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं लूत के जैसा जो स्वर्ग जाएंगे.
We have a phrase in the US and in England, by the skin of your teeth.
Pardon?
By the skin of your teeth.
Teeth or teeth?
Teeth.
Teeth. ऐसा बहुत सारे इंग्लैंड में कहा जाता है कि आपके दांत के ऊपर आपके चमड़ा.
There's a little bit of an enamel on your teeth.
और कि कुछ कुछ एनामेल रह जाता है दांतों के ऊपर.
It makes them smooth, it makes them shiny.
और ये चकचक करता है, चमकीला करता है और ये नरम लगता है.
It protects them from cavities and from things that would destroy them.
ये दांत खराब होने से हमें बचाता है.
That's the skin of your teeth.
और इसको क्या बोलते हैं कि दांतों के ऊपर चमड़ा.
It's incredibly thin.
और ये बहुत पतला होता है.
And you can't even know that it's there.
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपके दांतों के ऊपर है.
Until it's gone.
और जब तक ये चला जाता है.
That's how Lot entered heaven.
और उसी तरह लूत जो है स्वर्ग में गया.
By the skin of his teeth.
और अपने दांतों के चमड़े के हिसाब से.
He entered with no reward.
और वो बिना पुरस्कार के साथ वो प्रवेश किया.
He entered with no assurance.
और बिना सुरक्षा के साथ प्रवेश किया.
And the writer of Hebrews wants something different.
और इब्रानियों के लेखक कुछ अलग हमें दिखाना चाहते हैं.
He wants you to fear God.
वो चाहते हैं कि परमेश्वर का भय माने.
He wants you to trust Christ.
वो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए कहते हैं.
He does not want it to appear that you have fallen short.
और वो नहीं चाहते हैं कि आप उसी के लूत के जैसे गिरने पड़े जैसे दिखे.
He wants you to work out your salvation.
वो चाहते हैं कि आप अपने उद्धार के लिए कुछ करें.
Labor to lay hold of that which Christ has laid hold of you for.
और वो क्या है? वो मसीह को थामे रहना है, पकड़े रहना है.
Remember every single day that Christ died for you.
और हर दिन आपको ये सोचना है कि यीशु मसीह आपके लिए मरे.
The one who is above the angels.
और जो व्यक्ति स्वर्गदूतों से ऊपर है.
The one who created all things.
और जो व्यक्ति सारी चीजों को बनाया.
The one who holds all things together by the word of his power.
जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य हाथों से सब कुछ पकड़े रहता है.
Humbled himself for you.
और वो आपके लिए मेरे लिए नम्र बना.
And when you remember that.
और जब ये आप याद करेंगे.
On a daily basis.
और हर दिन.
It makes a difference how you live.
ये आपके जीवन में कैसे आप जी रहे हैं और आपके जीवन में बदलाव लाएगा.
Because you want nothing else than Christ.
लेकिन क्योंकि आप और कुछ नहीं चाहे मसीह में यही चाहिए.
The world will fall away.
ये जो दुनिया है वो गिर जाएगा, नाश हो जाएगा.
And Christ will be your focus.
और इसीलिए मसीह ही आपका फोकस होना जरूरी है.
Amen.
Amen.